हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदनी। एक दिन मोहित और संध्या कॉलेज के टॉयलेट की दीवार के पीछे सेक्स कर रहे थे। मोहित संध्या को पूरी स्पीड से चूद रहा था। उस समय इत्तेफाक से मैं अपनी सहेलियों के साथ वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए गई थी। तभी मैंने कुछ आवाज़ सुनी। हम सारी सहेलियां उस तरफ गईं तो देखा कि मोहित संध्या के पीछे खड़ा होकर उसमें धक्के मार रहा है और संध्या मस्ती में चिल्लाकर उसका जोश बढ़ा रही थी। आह, और जोर से करो। इस सीन को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोहित को बहुत प्यार करती थी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने एक बार मुझसे भी इस तरह करने के लिए बोल कर देखा तो होता, मैं उसके खातिर झट से राजी हो जाती। पर वो तो संध्या के साथ सेक्स कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैं चुप रही और अपनी आंखों में आंसू भरकर वहाँ से चली आई। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आया। उसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी भी मेरा दिल उसके लिए धड़कता था। मोहित मेरी ठुड्डी को हिलाते हुए बोला, क्या बात है नंदनी, तुम उदास दिख रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं। तो बोला, नहीं कुछ तो ज़रूर है। उसके ऐसा बोलने पर मेरी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। मोहित बोला, अरे अरे ये क्या, क्यों रो रही हो। वो मेरी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली। मैं उसके सीने में अपने सर को छिपाते हुए बोली, मोहित मुझ में क्या कमी है जो तुम संध्या के साथ। आधी बात कहकर मैं रुक गई। मोहित मुझसे अलग होते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो। मैंने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? पर मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। मेरे दिमाग में ना अभी भी वही जुदाई वाला सीन चल रहा था। मैंने मोहित से पूछा, मोहित मुझ में क्या कमी है जो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मोहित ने कहा, तुम अपने आप को देखो और उसको देखो। तुम एक बुझी हुई मोमबत्ती हो और वो भभकती हुई मशाल है। उसको देखते ही क्या, मेरे पूरे जिस्म में हिलोरे मारने लगता है। उसको देखकर उसे बाहों में भरने का मन करता है। उसकी उठी हुई छाती को देखो, उस पर से नज़र ही नहीं हटती। और तुम हो तो मैं तो कुछ है ही नहीं। उसके इस बात को सुनकर मैं तड़प गई और बिना कुछ सुने या बोले मैं तुरंत घर आई। अपने कमरे में आर खूब फूट फूट कर रोई। फिर खुद को नंगा करके शीशे के सामने देखा। क्या गलत कहा था मोहित ने, मेरे सीने में तो कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे दो पिलपिले से आम लटक रहे हों जो कपड़ा पहनने के बाद दिखते भी नहीं। और संध्या और दूसरी लड़कियों की छातियों पर तेल लड़कों की नज़रें नहीं हटती। उनकी चुच्चियाँ कितनी तनी हुई हैं। ये सब सोचकर मेरा एक बार फिर रोने का मन कर रहा था। तभी मेरा दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कपड़े पहनकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरी नई नवेली भाभी खड़ी थी। मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अरे नन्नी क्या बात है, क्यों रो रही हो। मैंने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। भाभी बिना किसी अवरोध के कमरे में आई और अंदर दरवाज़ा बंद करके बोली, कुछ तो बात है, मुझे अपना दोस्त समझ और मुझे बता। मैं उनसे लिपट कर बहुत रोई और एक एक बात बता दी। वो सुनकर भाभी बोली, साले मर्द होते ही ऐसे हैं, वो सिर्फ जिस्म देखते हैं। तभी मेरी नज़र भाभी की छाती पर पड़ी। मैं उनकी चुच्ची पर हाथ रखते हुए बोली, भाभी आपके मम्मी तो बड़े बड़े हैं। भाभी मेरे हाथ को पकड़कर बोली, नंदनी मर्द को रिझाने के लिए बहुत काम आता है। तेरे भैया रात को सबसे पहले मेरे मम्मी पर अपनी पूरी पावर लगाते हैं। मैंने कहा, भाभी मैं अपने मम्मों के लिए क्या करूँ। भाभी बोली, तू चाहे तो किसी डॉक्टर से राय ले ले। उनकी इस बात को लेकर मेरे मन में आशा की किरण जल उठी। मैंने उनसे इस बारे में बात और भी की। उनसे बात करने के बाद उनकी बातें सुनकर मेरा थोड़ा मन हल्का हुआ। उस रात मेरे सपने में मोहित मुझे प्यार कर रहा था, लेकिन जैसे उसने मेरी कुर्ती उतारी, मेरी छाती की तरफ देखा तो मुझसे छिटक कर दूर चला गया और बोला, तुझमें तो कुछ है ही नहीं। उसकी ये झड़की सुनकर मेरी नींद टूट गई और बाकी सारी रात अपने जिस्म पर मैं खुद हाथ फिराते फिराते बिता दी। मेरा मन इस टाइम ना तो पढ़ाई में लग रहा था और न किसी काम में। मैं बस चिड़चिड़ी हो रही थी। दूसरे दिन मेरा पहला काम एक ऐसे डॉक्टर को सर्च करना था जो मेरी इस समस्या से मुझे निजात दिलाए। कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर एक सिक्स कंसल्टेंट डॉक्टर था जिसका नाम शक्ति सिंह था। अब मैं सोच में पड़ गई मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक पुरुष था। फिर भी मैंने हिम्मत बांधी और उसके क्लिनिक पर चली गई। कुछ ही देर बाद मेरे सामने एक जवान उम्र का डॉक्टर था। अब मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ उससे पूछूं। उस डॉक्टर ने मुझसे कई बार पूछा पर मैं कुछ बता ही नहीं पाई और वहाँ से भाग कर आ गई। एक बार फिर से शीशे के सामने खड़ी हुई तो अपने जिस्म पे वही पिलपिले आम लटके मेरे दो दो कबूतर बिल्कुल बेजान लग रहे थे। दोस्तों, आप ये कहानी antarvasana.com पर सुन रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे मोहित के लिए कुछ तो करना था ना। मैं दूसरे दिन बड़ी हिम्मत बांध कर उस डॉक्टर के पास फिर से गई। मुझे वापस आया देख कर वो मुस्कुराया, बोला, हाँ मैडम, तो पहले आप अपना नाम बताओ। मैंने कहा, जी मैं नंदनी। मैं अभी भी थोड़ा झिझक रही थी तो अपनी सीट से उठा, मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला, मिस नंदनी, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे कि मुझे किस चीज़ का इलाज करवाना है। इतना कहने के बाद वो मेरे सामने बैठा और बोला, आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है? मैंने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोला, ओके तो ज़रा आप सामने की तरफ खड़े हो जाओ, मैं जान जाऊँगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जी मैं अपनी छाती के, ये कहकर मैं चुप हो गई। डॉक्टर बोलता है, लेकिन मुझे तो आपकी छाती पे कोई कमी नज़र नहीं आ रही। जी मेरा मतलब, मेरे मम्मों के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने एक ही झटके में अपनी सारी बात बोल दी। तो वो डॉक्टर थोड़ा सा मुस्कुराया, बोला, मैडम मैं समझ गया, अब जब आपके मम्मों को मैं देख नहीं लूँगा तब तक कुछ बता नहीं पाऊँगा, इसके लिए मुझे आपके मम्मों को नंगा करके देखना पड़ेगा। मैंने कहा, जी? और मैं उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। सॉरी मैडम अगर आपको बुरा लगा हो। मैंने कहा, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे मम्मी बहुत छोटे हैं और उसी के इलाज के लिए मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन सॉरी, बिना एग्जामिन के तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं उठकर जाने लगी तो डॉक्टर बोला, मैडम अगर आप कल फिर से आओगी तो एक डिसीजन लेकर आना, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं आपको नंगी देखने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, जब तक मैं प्रॉब्लम समझूंगा नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकता है। और हो सकता है आपको एग्जामिन करने के टाइम मुझे आपके मम्मी या दूसरे अंगों को भी छूना दबाना पड़े, इसलिए अपना मन पक्का करके ही आना। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। कॉलेज पहुँच कर मुझे फिर से वही बहन जी शब्द सुनने को मिला और रात को वही डरावने सपने आए जिसमें मोहित कह रहा था कि नंदनी तुम्हारे मम्मों से अच्छे तो आम हैं जिनको चूसने में मज़ा आता है। एक बार फिर से मेरी नींद टूट गई। मैं मोहित को लेकर दीवानगी की हद तक जा चुकी थी। रात में ही मैंने डिसीजन ले लिया कि अब चाहे कुछ भी करना पड़े मैं मोहित को अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। दूसरे दिन मैं एक बार फिर डॉक्टर के पास जा पहुंची। मुझे देखते हुए मुंह बनाकर बोला, सब कुछ सोच समझ कर आई हो ना मिस नंदनी? मैंने कहा, जी डॉक्टर। तब ठीक है, अब ना आप झिझकेंगे और ना ही शर्माएंगी। मैंने कहा, जी बिल्कुल नहीं, जो आप कहेंगे वही करूँगी। तो डॉक्टर बोला, ठीक है तो अपने ऊपर के पूरे कपड़े उतार दीजिए। दोस्तों मैंने अपनी कुर्ती समीज उतार दी। डॉक्टर मेरे समीप आकर मेरे दोनों ढलके हुए कबूतरों को घूर घूर कर देखने लगा। मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, मैंने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने पिलपिले से मम्मों को छुपा लिया। कहकर वो एक बार फिर अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने जैसे अपनी समीज को पहनने के लिए उठाया उसने मुझे मना कर दिया, अब आप अपनी पजामे और पैंटी को उतार कर सामने की दीवार पर पीठ को मेरी तरफ करके खड़ी हो जाओ। मैंने बोला, आप इसको क्यों उतारना है? तो बोला, तुम अपने मम्मों को जिस शेप में चाहती हो उसके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। भाई मैंने तो वादा कर लिया था, सो मुझे अपनी पजामे और पैंटी उतार कर दीवार पर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गई। 2 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी में उंगली चला रहा है। मेरी एक झुरझुरी से मेरे जिस्म पे होने लगी। 2-3 बार उसने मेरी पीठ पे इसी तरह उंगली चलाई और पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा, एक सिहरन सी पूरे जिस्म में फैल गई। तो बोला, ठीक है जाओ वहाँ लेट जाओ। सामने पड़ी एक टेबल पे मैं लेट गई। वो मेरे मम्मों के बीच से लेकर नाभि तक उंगली चलाने लगा। मुझे एक बार उसी तरह से महसूस हुआ, इस बार उसने मेरे मम्मो पर अपने हाथ चलाने शुरू किए और साथ ही मेरी सहेली यानी मेरी जूत पर भी अपनी उंगलियां चला रहा था। मेरी आंखें बंद हो गई, मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, एक लास्ट टेस्ट और है, तुम अपने घुटने और हाथ के बल पर खड़ी हो जाओ। मैंने ऐसा किया, पता नहीं क्यों मगर अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने विरोध नहीं किया। उसने एक बार फिर मेरे मम्मों को दबाना शुरू किया और साथ ही मेरे पिछवाड़े पे अपनी उंगलियां चलाने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी जूत में हजारों चींटियां रेंग रही हैं। कुछ देर ऐसा करने के बाद उसने मुझसे मेरे कपड़े पहनने को कहा। मेरी तरफ देखते हुए डॉक्टर बोला, तुम्हें 10-12 दिनों तक रोज़ आना पड़ेगा ताकि तुम्हारे मम्मी तुम्हारी चाहत के शेप ले सके। ये सुनकर मैंने हामी भर दी और डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आई। दोस्तों, आगे के पार्ट्स में बताऊंगी कि और उस डॉक्टर ने मेरे साथ क्या क्या किया।